तृतीय दिवस।
ईश्वर की सृष्टि का नाम है जगत और जीव की सृष्टि का नाम है संसार। जगत में पृथ्वी है, जल है, वायु है और संसार में है तू तेरा, मैं मेरा, इसका उसका आदि आदि। ईश्वर की सृष्टि में कोई बंधन नहीं और जीव की सृष्टि में जीव स्वयं ही बंधता जाता है। कल प्रवचन में महर्षि ने बताया है कि ज्ञान के अभाव में जीव सदा ही बंधन में पड़ा रहता है। जैसे जैसे उसे ज्ञान का प्रकाश मिलता है वह साधक बन जाता है और साधना करते करते उसे मुक्ति मिल जाती है। किंतु जीव चाहे जिस परिस्थिति में हो, ब्रह्म तत्व सदैव उसमें विद्यमान है, इसलिए वह हमेशा ही पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है, पूर्ण निर्भयता चाहता है, पूर्ण आनंद चाहता है। चाहता तो सब कुछ पूर्ण है किंतु पूर्णता मात्र ब्रह्म में ही है। संसार में अनात्म पदार्थों से प्रेम करता है, वहीं आनंद ढूंढता है और दुखी हो जाता है। संसार सर्वथा समस्या युक्त है, आध्यात्म सदैव ही समस्या मुक्त है। अब आप सबकी ओर से महर्षि से निवेदन करती हूँ कि चरम लक्ष्य विषय पर अपना प्रवचन प्रारंभ करें। आप सभी प्रतिदिन प्रवचन में आकर अपने चरम लक्ष्य के प्रति सदैव सजग हो जाएंगे और निश्चित ही सफल साधक बन पाएंगे।
ॐ मनाद्यानन्दकूटस्थ ज्ञानानन्दसदात्मनि अभूतद्वैतजालाय साक्षिणे ब्रह्मणे नमः। यद् वक्त्रमानससरः प्रतिलब्धजनः भाष्यारविन्दमकरन्दरसं पिबन्ति प्रत्याशमुन्मुखविनीतविनीयभृङ्गास् तान् भाष्यवित् तक गुरुन् प्रणमामि मूर्ना। यस्याहुरागमविदः परिपूर्णशक्ते रंशे कियत्यपि निविष्टममुं प्रपञ्चम् तस्मै तमालरुचिभासुरकन्धराय नारायणी सहचराय नमः शिवाय। मम न भजनशक्तिः पादयोस्ते न रक्तिः न च विषयविरक्तिर्ध्यानयोगेन शक्तिः। इति मनसि सदाहं चिन्तयन्नाद्यशक्ते रुचिरवचनपुष्पैरर्चनं सञ्चिनोमि। रुचिरवचनपुष्पैरर्चनं सञ्चिनोमि। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्ययत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमदेवहितं यदा स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो यरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चरम लक्ष्य का विचार कर रहे थे, चरम लक्ष्य को बतलाते हुए भगवान ने कहा, ज्ञेयं यत् तत्प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। भगवान कहते हैं यद् ज्ञेयं तत् प्रवक्ष्यामि, जो जानने लायक चीज है, जिसके जानने से सब कुछ जान लिया जाता है, उसको मैं प्रकर्षेण वक्ष्यामि भली प्रकार से बताऊंगा। परमेश्वर के दो प्रकार से हम सपर्या में प्रवृत्त हो सकते हैं, परमात्मा की तरफ जाने के दो रास्ते हो सकते हैं। एक है मानने का रास्ता, एक है जानने का रास्ता। एक मानकर चला जाता है और एक जाना जाता है। सनातन धर्म को छोड़ करके संसार के जितने भी मत मतांतर हैं, वो सारे के सारे मानने का विचार करते हैं, जानने के विषय में उनको बड़ी घबराहट है। जिनको सेमिटिक धर्म कहा जाता है, अर्थात यहूदी मुसलमान और ईसाई, वो तो प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं ज्ञान ही बंधन का कारण है, ज्ञान से बचो। उनकी सारी कथाओं का प्रारंभ यहीं से होता है। ज्ञान के वृक्ष कव फल खाने का यहोवा ने, गॉड ने या अल्लाह ने मना किया और मनुष्य ने उसको खाया, उसके साथ ही वो गड़बड़ाया। इसलिए वो लोग बार बार कहते हैं मानो जान नहीं सकते। सनातन धर्म मानने के रास्ते का भी विचार करता है, जानने के रास्ते का भी विचार करता है। आचार्य शंकर लिखते हैं द्विविधो हि ब्रह्मणो रूपम्। परब्रह्म परमात्मा के दोनों ही रूप हैं। मानने का रास्ता है ध्येय ब्रह्म का, जानने का रास्ता है ज्ञेय ब्रह्म का। परमात्मा के स्वरूप को परोक्ष रूप से समझ करके उसका बार बार चिंतन ध्यान इत्यादि करना, ये ध्येय ब्रह्म है। परमात्मा के रूप को समझा तो यहां भी जाता है, परंतु ये समझना परोक्ष रूप से है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अपरोक्ष रूप से नहीं। परंतु जहां ज्ञेय ब्रह्म का विचार आता है वहां पर अपरोक्ष रूप से ही उसके ज्ञान से तात्पर्य है। परोक्ष रूप से जानने का फल यहां भगवान ने यज्ञात्वा मृतमश्नुते नहीं कहा है। परमेश्वर का जो साक्षात ज्ञान है उसी को कहा यज्ञात्वा मृतमश्नुते। यहां पर भी कहा जिसको जान के अमृतत्व की प्राप्ति होती है, और जहां इस ज्ञेय ब्रह्म का भगवान समापन करेंगे वहां पर भी यही कहेंगे मद्भक्तये तद विज्ञाय। जो मेरा भक्त इसको विज्ञाय साक्षात्कार कर लेता है वो मद्भाव को प्राप्त कर जाता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर जाता है। उसमें और मेरे में कोई फर्क रह नहीं जाता। वहां पर भी कहेंगे विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते, यहां भी कहते हैं ज्ञात्वा मृतमश्नुते, जानने मात्र से ही अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है। मृत का मोटा अर्थ होता है मरना, परंतु मरने का मतलब क्या? सामवेद की कौथुमी शाखा की छांदोग्योपनिषद कहती है यद अल्पम तन्मर्त्यम, परिच्छिन्नता अल्पता अपूर्णता ही मृत्यु है। इसलिए अमृत का कल तात्पर्य बतलाया पूर्णता की प्राप्ति। अमृतमश्नुते मन पूर्ण भाव को प्राप्त हो जाता है। परिच्छिन्न भाव अल्प भाव सीमित भाव यही तो मृत्यु है। सामान्य लोग समझते हैं शरीर का छूटना मृत्यु है। शरीर का छूटना विचार करके देखोगे तो रोज ही थोड़ा थोड़ा छूट रहा है। जिस प्रकार से कोई कपड़ा तुम्हारे पास हो उसमें से तुम आधा आधा इंच कपड़ा रोज फाड़ते जाओ तो अपने आप थोड़े दिनों में कपड़ा खत्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से शरीर के अंदर निरंतर विकार हो रहे हैं। जो शरीर बचपन का था वह जवानी में नहीं रहा, जो जवानी का शरीर था वह बुढ़ापे में नहीं रहा। भगवान ने प्रारंभ में ही इसलिए अर्जुन को मृत्यु का स्वरूप समझाते हुए यही कहा कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार से मनुष्य कुमार अवस्था में जाता है, युवा अवस्था में जाता है, वृद्धावस्था में जाता है, शरीर बदल रहे तथा देहांतर प्राप्ति, दूसरा नया शरीर मिलना उससे भिन्न जाति की कोई चीज नहीं है। यह जो निरंतर बदलने वाले शरीर, निरंतर बदलने वाले मन के साथ हम अल्प भाव को प्राप्त कर रहे हैं, परिच्छिन्न भाव को प्राप्त कर रहे हैं, इस परिच्छिन्न भाव से हट करके अमृतम अश्नुते पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। ये जिज्ञात्वा, उस ज्ञेय ब्रह्म को मैं बतलाने जा रहा हूं। ज्ञात्वा अमृतम, किसी चीज को जान के कोई चीज बदला करती है क्या? हम परिच्छिन्न हैं, रात दिन हम अपने को सीमाओं में अपूर्णताओं में अनुभव कर रहे हैं। विलक्षण बात भगवान ने कह दी, तुमको मैं वह ज्ञेय ब्रह्म बतलाऊंगा जिसको जान करके तुम मृत भाव से हट करके अमृत भाव को प्राप्त कर जाओगे। ये क्या कभी संभव है? ज्ञान से जो वस्तु जैसी है वैसा पता लगा करता है, ज्ञान से कभी किसी वस्तु के स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। ज्ञान के द्वारा जो चीज जैसी है, सामने घड़ा रखा है तो घड़े का ज्ञान होगा, जैसा घड़ा है वैसा तुम जानोगे। तुम्हारे जानने से वहां उस घड़े में कोई परिवर्तन हो जाए, क्या ये संभव है? फिर भगवान कैसे कह रहे हैं यज्ञात्वा अमृतमश्नुते? और ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान ने कोई नई बात कह दी। बार बार वेद कहते हैं, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। यह ऋग्वेद के दशम मंडल का मंत्र स्पष्ट रूप में कहता है, तमेव विदित्वा, उसका ज्ञान करके ही मृत्युमत्येति, तुम मृत्यु के परे चले जाओगे, सारी परिच्छिन्नताओं को छोड़ करके पूर्ण भाव को प्राप्त कर लोगे। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही ज्ञानादेव तु कैवल्यम। एक जगह नहीं, अनेक जगह श्रुति बार बार कहती है, ज्ञान से अमृत की प्राप्ति। ज्ञान से कभी पदार्थ बदला नहीं करता। इसलिए विचार करने की जरूरत पड़ती है, क्या कोई ऐसा स्थल भी है जहां ज्ञान से कुछ परिवर्तन आता हो? क्योंकि ज्ञान वस्तु को तो बदलेगा नहीं। यदि हम किसी वस्तु को समझते हैं कि हम जान रहे हैं परंतु उसकी वास्तविकता को जान नहीं रहे हैं, ठीक जैसे सामान्य अंधकार के अंदर हमको कमरे में एक सांप दिखाई दिया, सांप दिखाई दिया, सांप से हमको डर भी लगा, हिम्मत करके हमने बिजली का बटन दबा दिया, बिजली का खटका दबा दिया, प्रकाश हो गया। अब स्थित प्रकाश में, स्पष्ट प्रकाश के अंदर हमको दिखता है वहां रस्सी है, जहां हमको सांप दिखा था वहीं पर अब स्पष्ट प्रकाश के अंदर हमको रस्सी दिख रही है। इसका मतलब है कि जब मैं समझ रहा था मुझे सर्प का ज्ञान हो रहा है, उस समय में वहां पर सचमुच में तो रस्सी थी, परंतु मुझे लग रहा था सर्प है। कौन से स्थल के अंदर वस्तु हमको अलग ढंग से दिखती है? जहां वस्तु भ्रम से दिखी होवे। वहां की वास्तविक चीज को हमने न जाना हो, वहां हमको कुछ और दिख गया हो, कुछ और ज्ञान हो गया हो, वहां यदि हमको चीज का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है तो जो हमने भ्रम से देखा था वो हट जाता है। बार बार श्रुति कहती है और यहां भगवान भी कहते हैं यज्ञात्वामृतमश्नुते। इसका मतलब है कि जहां पर हमको परिच्छिन्नता दिख रही है वहां परिच्छिन्नता है नहीं, है वहां पूर्णता, लेकिन भ्रम के कारण मुझे वहां पर अपूर्णता की प्रतीति हो रही है। और जैसे ही साफ प्रकाश में उसको जानेंगे वैसे ही भ्रम से होने वाली चीज निवृत्त हो जाएगी, हट जाएगी। अब हमको दिख क्या रहा है? हमको दिख रहा है मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं किसी देश में हूं, मैं किसी काल में हूं, मैं किसी शरीर में बंधा हुआ हूं। तो देश की परिच्छिन्नता, यदि मैं दिल्ली में हूं तो मैं कलकत्ते में नहीं हूं, देश की परिच्छिन्नता। काल की परिच्छिन्नता, यदि मैं 20वीं शताब्दी में हूं तो 5000 वर्ष पूर्व मैं भगवान कृष्ण के समय में नहीं था। अथवा 5000 साल बाद मैं नहीं रहूंगा, देश की परिच्छिन्नता, काल की परिच्छिन्नता, शरीर की परिच्छिन्नता, वस्तु की परिच्छिन्नता। इस प्रकार से मुझे प्रतीत हो रहा है कि मैं परिच्छिन्न हूं, इसी प्रकार मुझे प्रतीत हो रहा है मैं करता हूं, कुछ करने वाला हूं। करना क्या है? चीजों के अंदर अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तन जब हम करते हैं तब कुछ कर्म करते हैं। किसी भी चीज में परिवर्तन मैं करता हूं, और चूंकि सारे परिवर्तनों को करने वाला मैं नहीं हूं इसलिए परिच्छिन्न हूं। संभवतः जीवन में शायद 100 में 80 चीजें जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता, मुश्किल से 20 कर पाता हूं, यद्यपि उसमें भी हमको संदेह। इस प्रकार से वहां भी हमारी परिच्छिन्नता ही है। मैं भोगता हूं, भोग करने वाला हूं, वहां भी मैं परिच्छिन्न ही हूं। चाहता तो हूं 2000 रसगुल्ले बने हैं सारे अकेले खा जाऊं, पर 50 रसगुल्ले खाते खाते गले तक ठस हो जाता है, अब आगे नीचे उतरता नहीं, पेट भर जाता है मन भरता नहीं। जितना मैं भोग करना चाहता हूं मैं कर नहीं सकता, इसलिए कर्तृत्व में भी मुझे परिच्छिन्नता की प्रतीति, भोक्तृत्व में भी मुझे परिच्छिन्नता की प्रतीति, सीमा की प्रतीति। अब ये जो सीमा का भाव है, मृत भाव है, ये तभी हमारा ज्ञान से हट सकता है यदि यह भाव वास्तविक न होवे, सच्चा न होवे, केवल अज्ञान से हो। इसलिए भगवान भाष्यकार आचार्य शंकर जब ब्रह्म सूत्र का उपोद्घात करते हैं तो सबसे पहले यह बात समझाते हैं कि ये संसार का स्वरूप कैसे भ्रम से है। हमको जितनी प्रतीतियां हो रही हैं सब भ्रम से हो रही हैं। परमात्मा को नहीं जानने से हो रही है। ठीक वही हाल है हमारा। कोई गांव का आदमी चलचित्र देखने चला गया, सिनेमा देखने चला गया, बायोस्कोप देखने चला गया, गांव के अंदर नौटंकी हुआ करती है, खेल खेलने वाले अभिनेता अभिनेत्रियां आया करती हैं और रंगमंच पर खड़े होकर के, स्टेज पर खड़े होकर के कार्य करते हैं, खेल दिखलाते हैं। अगर किसी की बहुत अच्छी क्रिया होती है, बहुत अच्छा अभिनय होता है तो लोग ताली बजा के कहते हैं एक बार फिर, एक बार फिर। तो वो तो चेतन है ना, वो लोग पुनः उस क्रिया को दिखला देते हैं। अगर कोई बहुत बुरी क्रिया होती है तो लोगों को गुस्सा आता है तो गालियां बकने लगते हैं, जूता फेंक के भी मारने लगते हैं। अब वह गांव का आदमी नौटंकी देखने वाला शहर में चला गया, चलचित्र देखने पहुंच गया, सिनेमा देखने पहुंच गया, वहां पर उसको भी नौटंकी की तरह लोग क्रिया करते हुए दिख रहे हैं, उसको भी गुस्सा आता है, वो जूता उठा के फेंकता है, उसको कोई दृश्य अच्छा लगता है, वो कहता है फिर एक बार आंकोर। क्या होता है? कुछ नहीं होता। चाहे जितना कहते रहो फिर एक बार, वो तो आगे ही चलता रहेगा। जितना गुस्सा करके तुम वहां जूता फेंक दो कुछ नहीं होना है, क्योंकि वहां पर सच्चा कोई अभिनेता अभिनेत्री है नहीं। सच्चा तो वहां केवल पर्दा है। पर्दे के सिवाय जो वहां दिख रहा है वो केवल छाया मात्र है, प्रकाश और छाया का खेल है, और वहां पर वास्तविक कुछ नहीं है। इसलिए जो लोग शहर के रहने वाले, आप लोग सभ्य लोग, संस्कृत लोग, कभी सिनेमा में जाकर के ताली बजा के कहते हो फिर से एक बार, जानते हो ये तो दृश्य जो निकल गया सो निकल गया, गांव वाले को भ्रम हो जाता है। केवल भारतवर्ष में ही भ्रम होता हो ऐसा नहीं समझ लेना। एक बार हम कहीं किसी विदेशी पत्रिका में देख रहे थे, कोई गांव का आदमी अमेरिका के अंदर किसी चलचित्र को देखने पहुंच गया, तो वहां सवेरे 9 बजे से सिनेमा शुरू होता है और रात को 3 बजे तक होता रहता है। 8 चित्र वो लोग दिन भर में दिखाते हैं, जब जिसको मौका हो वे तो देख लो। अब वो 9 बजे देखने गया, जैसे ही खेल खत्म होवे वैसे ही दौड़ के जावे फिर दूसरा टिकट लेके आ जाए, फिर खेल खत्म होवे फिर तीसरा टिकट लेके आ जाए, मैनेजर ने देखा ये सवेरे से बार बार इस खेल को देख रहा है, इसको इसमें कौन सी ऐसी चीज बड़ी विलक्षण और पसंद आ गई। उसने कहा, अरे भाई तुमको इस खेल में कौन सी चीज ऐसी बढ़िया नजर आ गई जो तुम बार बार देख रहे हो। बोले, अरे बढ़िया की बात नहीं है, वो जो नायिका है, अभिनेत्री है, वो जैसे ही तालाब में नहाने के लिए अपने वस्त्रों को उतारने लगती है, उसी समय रेल सामने से निकल जाती है। तो आगे वो कैसे नहाई क्या नहाई पता नहीं लगता। मैं सोचता हूं कि कभी ना कभी तो रेल देरी से आएगी तो दिख जाएगा। तो जो समझता है वहां वास्तविक है वो तो कहता है ऐसा हो और ऐसा न हो, परंतु आप लोग सभ्य और संस्कृत हैं, आप लोग जानते हैं कि अगर उस चलचित्र में रेल को उस समय निकलना है तो आज से 1000 साल बाद भी निकलना ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए आप उसमें किसी परिवर्तन के लिए हे और उपादेय के लिए कोई प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं करते। ठीक इसी प्रकार से जब यह पता लग जाता है कि यहां पर तो पर्दे की जगह पर सिवा एक पर ब्रह्म परमात्मा के कुछ नहीं है, अधिष्ठान मात्र है, सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, यहां सिवाय उस परब्रह्म परमात्मा के और कुछ नहीं। परंतु चलचित्र जिस समय दिख रहा होता है उस समय पर्दे का भान होता भी है और नहीं भी होता, विचित्र परिस्थिति है। पर्दे का पर्दा रूप से तो भान नहीं होता, परंतु यदि वहां पर्दे का भान न हो तो वो सारे के सारे चित्र वहां तुमको नजर कैसे आवे। इसलिए पर्दे का पर्दे रूप से भान नहीं होता, लेकिन उन सारे खेलों को देखने का आधार रूप से वहां पर उसका भान है भी। इसलिए शास्त्रकारों ने भ्रम का विचार करते हुए कहा, अध्यस्तमेव, जो अध्यस्त चीज है, जो भ्रम से दिख रही है, वही परिस्फुरति भ्रमेषु, नान्यत् कथंचन परिस्फुरति भ्रमेषु। जो अध्यस्त नहीं है अर्थात अधिष्ठान है, वो वहां कभी प्रतीत नहीं होगा। प्राचीन काल के दृष्टांत, रज्जुत्व, शुक्ति शकलत्व, जिस प्रकार से तुमको जब सांप दिखता है तो रस्सी पने को नहीं देख सकते, रस्सी की लंबाई, रस्सी की मोटाई और सांप की लंबाई, सांप की मोटाई एक ही है। वहां पर आपको रस्सी पने से रस्सी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन रस्सी की लंबाई दिखाई दे रही है, रस्सी की मोटाई दिख रही है, रस्सी का सामने पना दिखाई दे रहा है, पुरोवर्तिता दिखाई दे रही है, ये सब आपको सांप में दिख रही है। इसलिए जहां भ्रम होता है वहां भ्रम के दो प्रकार होते हैं। कहीं पर भ्रम के कारण पदार्थ स्वरूप से दिखाई देता है और कहीं पर चीज वास्तविक होती है परंतु उसकी वास्तविकता छिप करके वो किसी भ्रम के साथ दिखाई देती है, इसलिए कहते हैं दो प्रकार का भ्रम है, कहीं पर स्वरूपाध्यास है, कहीं संसर्गाध्यास है। जिस चीज के केवल संसर्ग का भान हो रहा है वो चीज तो सच्ची है, परंतु उसके साथ जो चीजें दिख रही हैं वो अध्यस्त होने से वो ज्ञान भी अध्यस्त है। ठीक इसी प्रकार से हमको संसार में जो पदार्थ दिखता है किस रूप से दिखता है, है रूप से दिखता है। और यदि वह चीज वहां नहीं है तो नहीं है रूप से दिखती है। इसलिए भगवान ने यहां स्पष्ट कह दिया, न सत्तन ना सदुच्यते। संसार के जितने पदार्थ हैं वो या सत माने है रूप से दिखते हैं और या नहीं है रूप से दिखते हैं। नहीं है के अंदर भी है तो बैठा ही हुआ है, बिना है के तो नहीं है का भी भान नहीं होगा। इसी प्रकार हमको सब चीजों का ज्ञान होता है, कोई चीज है तो उसका ज्ञान भी जरूर है। ये सच्चित रूपता तो हमको संसार के पदार्थों में दिख रही है, ये वस्तुतः पूर्ण परमात्मा में है, लेकिन संसर्ग के कारण प्रतीत हो रही है पदार्थों के अंदर। परंतु जो संसार के पदार्थ हैं वो स्वरूप से अध्यस्त है, वो वस्तुतः नहीं। अब यह जो परमात्मा का अधिष्ठान रूप है उसको भगवान ने कह दिया, न सत न असत तद उच्यते। जिस प्रकार से हमको चीजें है और नहीं है रूप में दिखती हैं, वैसा परमात्मा वो परब्रह्म गेय ब्रह्म नहीं है। हमने आज तक जो चीजें समझी हैं है और नहीं है रूप में, वो है और नहीं है दोनों ही रूप तो अध्यस्त हैं, अध्यस्तमेव परिस्फुरति भ्रमेषु। इसका मतलब ये नहीं कि उसका हैपना अवास्तविक है। जैसे यहां कह दिया है न सत्तन नासदुच्यते, ऐसे ही अन्यत्र सामवेद की जैमिनीय शाखा के केनोपनिषद में कह दिया है कि वह ज्ञात और अज्ञात दोनों नहीं है। जैसे यहां कहा है सत और असत नहीं है, वैसे वहां कहा है विदित और अविदित नहीं है। अर्थात जिस प्रकार से हम चीजों को जानते हैं और नहीं जानते, वो प्रकार उसका नहीं है, वो तो नित्य ज्ञान स्वरूप है, नित्य सत स्वरूप है। यह जो ज्ञेय ब्रह्म की विशेषता है इसके कारण है, जब तक हमको कोई प्रवक्षामी न कर देवे, जब तक हमको कोई इस चीज को समझा न देवे, तब तक हम इसको ढूंढते रहेंगे, कभी पता लगेगा नहीं। हमारी स्थिति वैसे भूले भटके की स्थिति है, जिसका कुछ मानो खो गया है, कोई चीज खो गई है, ढूंढ रहे हैं। जो कल पूर्णता बताई थी उसको अनादि काल से हम ढूंढ रहे हैं। क्या कारण है कि मनुष्य को कभी चैन नहीं मिलता? क्योंकि उसकी पूर्णता खोई हुई है। बार बार उस पूर्णता को ढूंढ रहा है जिसका इतना बड़ा धन चला गया हो, उसको क्या कभी चैन मिल सकता है? इसीलिए ये हमेशा अशांत है। चाहे जितना हंस खेल लेवे, कहीं न कहीं हृदय में इसके हमेशा उदासी बनी रहती है। एक छटपटाहट है, उस छटपटाहट को भुलाने के लिए ये तरह तरह के काम करता है, तरह तरह के पदार्थों को एकत्रित करता है, परंतु ये छटपटाहट, ये अपूर्णता जाती नहीं है। जीवन भर खोजते हैं, नहीं मिलता, इसलिए मरते हैं। मर करके वहां जाते हैं, वहां पर भी ये अशांति मिटती नहीं, ये छटपटाहट मिटती नहीं, ये उदासी जाती नहीं, इसलिए फिर पैदा होते हैं। कई बार अपनी मूर्खता के कारण हम हार जाते हैं, हार करके कह देते हैं अरे इस पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी, चलो संसार की अपूर्णताओं में ही मन को रमा लेवे। जो व्यक्ति कहता है अरे मुझे इन अपूर्णताओं की जरूरत नहीं, मैं तो अपना जैसा हूं वैसा ही खुश हूं, इतना ज्यादा अन्वेषण, इतना ज्यादा परिश्रम मेरे से होने वाला नहीं, वो स्वयं अपने को ही झांसे में रख रहा है, अपने को ही धोखा दे रहा है, क्योंकि तृप्ति होती नहीं। अतः जो कहता है मैं संसार में रहूंगा, वो वस्तुतः अपने को धोखा दे रहा है, क्योंकि ये अंदर की भूख मिटती नहीं। इस रास्ते को बतलाने के लिए ही भगवान कहते हैं अरे अर्जुन, तुम्हारी इस छटपटाहट को मैं जानता हूं, ये साधारण छटपटाहट नहीं है, ये उस अमृत भाव की प्राप्ति के लिए छटपटाहट है। लेकिन तुझे ढूंढना आता नहीं, किसी की कोई चीज खो जाती है तो भूल जाता है कहां है, यही तो याद नहीं पड़ रहा है कि है कहां। पुराने जमाने में यदि कोई चोर कोई चीज लेके भाग जाता था, कच्ची सड़कें होती थी, उसके ऊपर उसके पदचिन्ह बन जाते थे, पैर के निशान बन जाते थे, उन पैर के निशानों को ढूंढ करके चोर पकड़ लिया जाता था। उस गुम वस्तु के पदचिन्ह यदि हमें मिल जाए तो हमारा काम बने। अब हम घर से बाहर आते हैं, हमको तरह तरह के पदचिन्ह चारों तरफ नजर आते हैं, हमारे घर से बीसियों आदमी बीसियों तरफ निकले हैं, लगता ये है कि पता नहीं कौन से पदचिन्ह से उसकी प्राप्ति होगी। क्या हम वैकुंठ का रास्ता पकड़ें, क्या हम कैलाश का रास्ता पकड़ें, क्या हम गोलोक का रास्ता पकड़ें, कौन सा रास्ता पकड़ें, कहां है उसके पदचिन्ह? तब भगवान कहते हैं ये सारे पदचिन्ह उसी के हैं, ये एक ओर न जाकर के सब ओर जा रहे, सब दिशाओं के अंदर गया हुआ वही है। और इसीलिए हम समझते हैं किसी एक पदचिन्ह से प्राप्त करेंगे, एक पदचिन्ह से जिसको प्राप्त करोगे वो देश की परिच्छिन्नता होने के कारण अपूर्ण होगा, पूर्ण होगा नहीं। इसलिए ऋग्वेद ने कहा सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात। यहां पर भी भगवान 11वें और 10वें में कहे आए हैं, कोई एक पद चिन्ह नहीं, संसार में जितनी चीजें हैं वो सब मेरे ही पद चिन्ह हैं, इसलिए ढूंढने का तरीका समझना पड़ता है। पहले समस्या थी किधर जाएं, और अब जिधर मर्जी उधर से उसमें प्रवेश कर सकते हैं, कोई निषेध नहीं, वो तो जर्रे जर्रे में वही तो है। ठीक जिस प्रकार से चलचित्र का जो पर्दा है वो क्या किसी एक चित्र में है, सारे चित्रों के पीछे वह एक ही तो पर्दा है। यह जो पूर्णता की दृष्टि है ये ज्ञेय ब्रह्म की विलक्षण दृष्टि है। ध्येय ब्रह्म में चलने वाला केवल एक पद चिन्ह के पीछे जाता है। संसार के अंदर आज सर्वत्र संघर्ष का बीज क्या है, क्यों मतमतांतरों में संघर्ष है, क्योंकि हरेक कहता है अरे इस पद चिन्ह से चलो तो काम होगा। केवल सनातन धर्म ही ये कह सकता है कि अरे किसी भी पद चिन्ह से चलो, सारे पद चिन्ह उसी के तो हैं, उसके सिवाय और है कौन। दक्षिण भारत में पांड्य देश है, तमिलनाडु के अंदर मदुरा के आसपास वो पांड्य देश है, कावेरी के तट पर। वहां एक राजा था, उसका नाम था कुब्ज पांड्य, वहां का राजा था। यद्यपि पैदा तो वह कावेरी के तट पर हुआ, सनातन धर्म की परंपरा में पैदा हुआ, परंतु संसर्ग दोष से गलत तरफ चला गया। सपांड्य वंश प्रभवोपि देवः संसर्ग दोषाचिरमार्हतानां। दीर्घ काल तक अर्हतों के साथ जैनियों के साथ उसका संपर्क होने के कारण धीरे धीरे परमेश्वर के मार्ग से, यह जो सर्वव्यापक परमात्मा है उसके मार्ग से वो भटक गया। मनुष्य संसर्ग दोष से कहां पहुंच जाता है इसका कोई ठिकाना नहीं। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था, बुरा नहीं मानना कोई, उसी समय एक विदेशी था, उसने कहा था कि यदि स्वतंत्रता के 3 वर्ष के अंदर इन लोगों ने अंग्रेजी को हटा दिया तो हट जाएगी, नहीं तो स्थिर हो जाएगी। हम लोग 3 की कौन कहे, पहले ही जो शराब की हमने बोतल ली उसमें लिखा हुआ था 15 वर्ष तक अंग्रेजी रहेगी, 3 की जगह 15 वर्ष। अब नशा चढ़ा, 15 साल के बाद हुआ अभी फिर 10 साल रहेगी। अब धीरे धीरे नशा इतना तेज हो गया है, लोग कहते हैं इसके बिना तो चल ही नहीं सकता। ये है संसर्ग दोष। जब उस भाषा का संसर्ग दोष होगा तो उसके सारे विचारों का दोष आएगा, सारा दृष्टिकोण दूसरा बनता चला जाएगा। यही कुब्ज पांड्य के साथ हुआ। परंतु पांड्य देश के राजा कावेरी के तट पर रहते थे, जो भक्ति का केंद्र है। इसलिए भगवान ने विचार किया, अरे इसका अपने पथ से भ्रष्ट होना ठीक नहीं। उस समय एक बड़े विलक्षण ज्ञान वाले थे, उनका नाम ही था ज्ञान संबंध। वो उस राजा से मिलने के लिए गए और उससे कहा कि भाई जो तू मान रहा है वो ठीक नहीं है, ये तेरी मान्यता है, वास्तविकता को समझ। उसने उन विद्वानों को सामने कर दिया, अपने यहां प्राचीन परंपरा हमेशा रही है कि आपस में विचार करके तत्व का निर्णय किया जाए। सेमिटिक धर्म जो मान्यता के धर्म है, उनका सिद्धांत रहा है मार काट करके दूसरे को अपनी बात मनाई जाए। वो मार काट कहीं तलवार गोली से होती है, कहीं पैसा दे करके होती है, परंतु कहीं पर भी बैठ करके तत्व का विचार करने को प्रवृत्ति नहीं है। कई बार लोग कहते हैं महाराज इतने ईसाई बन रहे हैं क्या किया जाए। हम उनसे कहते हैं समस्या ईसाई बनने की तो है नहीं, समस्या तो है वो लोग धन चाहते हैं, उनको जो धन देता है वो ईसाई बनता है। यदि कोई भी व्यक्ति आकर के ये बात कहे कि जी मैं ईसाइयों की इस चीज से प्रभावित हुआ हूं, ये उनका विचार ठीक है ऐसा हमें लगता है, तो उस विचार का खंडन तो हम कर सकते हैं। परंतु यदि कोई पैसे के लोभ में जाता है तो तुम जो पैसे वाले हो वो उसको दूसरा पैसे का लोभ दे दो, इसमें विचार क्या करेगा, प्रचार क्या करेगा। लेकिन अपने यहां परंपरा हमेशा शास्त्रार्थ की रही। जैनियों ने अपना पक्ष रखा, संसार तापान निखिलान निहंतुम शक्नोत्यहिंसैव हि शाक्य दृष्टा नार्च्यो महेशो न शिवा विभूतिर इत्यार्हता स्वाम अलिखन प्रतिज्ञा। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा उद्घोषित कर दी, लिख करके कह दिया, संसार के ताप को हटाने में समर्थ केवल अहिंसा ही है। कोई इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर नहीं है, नार्च्यो महेश, जिसकी अर्चना करने से हमारे संसार ताप दूर हो, न शिवा विभूति है, न कोई भस्म धारण इत्यादि करने की जरूरत है, बस यही हमारा सिद्धांत है, अहिंसा मात्र से ही काम हो जाता है। ये है कर्मवादियों का सिद्धांत, कुछ करके होता है ये मान्यता है, क्या करके होता है इसके विषय में अनेक भेद हो जाएंगे। ज्ञान संबंधर ने कहा मेरी प्रतिज्ञा ये है, वेदा प्रमाणम सहकामिकाद्यैर विश्वाधिक शंकर एक एव। वेदा प्रमाणम, वेद ही प्रमाण है, विश्वाधिक इस सारे विश्व से अधिक, जिस प्रकार चलचित्र के अंदर जितनी चीजें तुमको दिखती हैं उन सब से अधिक कौन है, तो जो वहां पर पर्दा पड़ा हुआ है, जिस दिन से वह सिनेमा बना है उस दिन से हजारों चित्र आए हैं, हजारों चित्र उसके ऊपर से आकर के निकल गए हैं, वो
वो पर्दा वैसा का वैसा बना हुआ है। जिस समय रात में कोई चलचित्र नहीं रहता, उस समय में भी वह पर्दा वैसा ही बना रहता है। इसी प्रकार अनंत सृष्टियों के अंदर अनंत प्रकार के अभिनय होते रहे हैं, परंतु वो जो पर्दा है, अधिष्ठान है, वो विश्वाधिक शंकर एक एव, और वो शंकर है अत्यंत कल्याण करने वाला है। वो कोई जड़ पर्दा नहीं है, चेतन पर्दा है। भस्मैव धार्यं भुवि मोक्षमाणैर् इत्यालिखन् स्वान् सगुरु प्रतिज्ञां। भगवान शंकर से संबंधित जो भस्म है उसका धारण करना चाहिए, भगवान का जो ऐश्वर्य है, विभूति है, उसको धारण करनी चाहिए। यदि चाहते हो इस संसार से छूटना, तो वह कर्म से नहीं छूटोगे, वह तो उनको अपने ऊपर धारण करने से ही छूटोगे। अपने इस अहम को छोड़ करके जब इसमें परब्रह्म परमात्मा के स्थान को दे दोगे, जब इस प्रकार उसके भस्म को धारण करोगे, तभी मोक्ष होगी, किसी कर्म को करके नहीं हो सकती। बड़ा लंबा चौड़ा शास्त्रार्थ चला, अंत में शास्त्रार्थ में वो लोग जवाब दे नहीं सके, तो कहने लगे, अरे जी ये तो बुद्धि का खेल है, ये मनुष्य की आदत होती है। पहले तो बातें करेगा बड़े बड़े विज्ञान की, और जब विज्ञान की बातों से उसको कहने लगेंगे कि आगे का विज्ञान ये कहता है, तो कहते हैं जी इसका तो कुछ पता नहीं लगता। ठीक इसी प्रकार से पहले शास्त्रार्थ करने को तैयार हुए, फिर कहने लगे शास्त्रार्थ से क्या तत्व का निर्णय होगा। यदि तुम्हारे पास कोई शक्ति है तो दिखाओ। पांड्य राजा को उदरशूल हो गया था, उससे उसको बड़ा ज्वर भी रहता था, बड़े कष्ट में था। कुब्ज पांडे ने कहा, मेरे उस उदरशूल के लिए सारी औषधियां हम करा चुके हैं, कोई लाभ नहीं हुआ, इसको आप लोग दूर कर सकते हैं। तो पहले तो विरोधियों ने सारा प्रयत्न किया, परंतु कुछ नहीं हुआ, सब तरह के मंत्र तंत्रों का प्रयोग कर लिया, क्योंकि वो कर्म का आधार था, हम ये करेंगे और तुम्हारे उदरशूल को दूर करेंगे। ज्ञान संबंधर अपने आनंद से बैठे रहे, कुछ नहीं किया। जब उन लोगों ने कह दिया हम लोगों से नहीं हुआ, राजा ने देख लिया, तब उससे कहा, कह रहे भाई आप लोग भी किसी पंडित वंडित को बुला करके जो मंत्र तंत्र करना हो सो करो। ज्ञान संबंधर हंस पड़े, बोले मंत्र तंत्र क्या करेंगे, वो तो ये लोग सब कर चुके। सज्ञान पूर्णः प्रविशन् दृशातम् संभावयामा सरुजाभितप्तम् कोटीर कोटीन्दु गलत सुधार्द्रम् अंतस्मरं देव महंग्रहेण। हंसते हुए अंदर जाते हैं, परंतु क्या स्पष्ट रूप से भान कराते हुए, करोड़ों चंद्रमा के चमकने वाला जो कोटीर भगवान शंकर का स्वरूप है, वही अहं ग्रहेण, वही तो मेरे अंदर बैठा हुआ है। ये जो अपने मैं को छोड़ करके उस परब्रह्म परमात्मा के मैं का आपादन करना है, अंतस्मरण देव महं ग्रहेण, अत्याश्रमस्थो मुनिरस्य राज्ञो भाग्येन फाले भसितं निधाय। उन्होंने थोड़ा सा भस्म लिया, क्योंकि वो अत्याश्रमी थे, विवाह आदि उन्होंने किया नहीं था, अत्याश्रमी थे। जैसे ही उस भस्म को भगवान शंकर के आधार पर उन्होंने लगाया, वैसे ही सस्पृष्ट मात्रो भगवत्तरेण शिवाभिमर्शेन गुरोः करेण, छूने के साथ ही उसके सारे रोग तुरंत निवृत्त हो गए। तत्याज विश्वत्रय भेषजेन तापज्वरार्तिम सहसा नरेन्द्रः। केवल वही नहीं, उसको लगा कि मेरे तो तीनों कालों के जो दोष हैं, जो रोग हैं, वो सारे के सारे निवृत्त हो गए। अब स्वभाव से उसने इस चीज को समझ लिया, मैं परमेश्वर के मार्ग से हट गया था, मुझे पुनः परमेश्वर के मार्ग में ही जाना है। और उसके बाद उसने अपने सारे प्रजाजनों के लिए नियम कर दिया, अधीश्व वेदान अवधारयार्थान अधीहि शंभुम वह भूति मंगे। वेदान अधीश्व, आप लोग सब वेद का अध्ययन करें, सारी प्रजा को उसने कह दिया। अवधारयार्थान, वेद के अर्थ का निर्णय करें, भगवान शंकर का ध्यान करें और भगवान शंकर की जो विभूति है उसको अपने जीवन में धारण करें। इस प्रकार से वह जो अधिष्ठान है उसको जो हृदय में धारण कर लेता है, उसके लिए फिर मान्यता की बात नहीं रहती, उसको फिर ध्येय ब्रह्म की जरूरत नहीं रहती। यह जो ज्ञेय ब्रह्म है उसके लिए जिधर देखो उधर उसका रास्ता खुला हुआ है, संसार के जर्रे जर्रे में वही है। उसके बाद जहां देखता है वहां उसके बिना और कुछ नहीं। अब प्रयत्न करना नहीं पड़ता, अब तो निरंतर उस पूर्णानंद के प्रवाह में बहना मात्र रह जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, यज्ञात्वा अमृतमश्नुते, वो कौन है तो न सत्तन नासदुच्यते, जिसको है और नहीं है के द्वारा कहा जा सकता है, ऐसा वह ब्रह्म नहीं है जो है और नहीं है के द्वारा कहा जा सके, वो तो अध्यस्त पदार्थ ही होगा। उसको न है कह सकते हो न नहीं है कह सकते हो, दोनों से परे है। और जैसा यहां नहीं कहने पर भी अन्यत्र उपनिषद में कहा है, न वो ज्ञात है न वह अज्ञात है, वो तो दोनों से परे है। अनादिमत परम ब्रह्म, इसलिए उसका कोई आदि नहीं है, कोई दिन नहीं है जिस दिन तुम परमात्मा को पाओगे, तुम तो हमेशा उसको पाए हुए हो। केवल भ्रम से समझ रहे हो, नहीं पाया हुआ हूं। ठीक जिस प्रकार से जिस समय तुम सारे चलचित्र को देख रहे हो, उस समय वहां पर पर्दे को तो देख ही रहे हो, लेकिन पर्दे को पर्दे रूप से समझ नहीं रहे हो। इसी प्रकार ये सारे संसार का खेल जहां देख रहे हो, वहां सर्वत्र वही वह है, परंतु नहीं जानने के कारण समझते हो मुझे संसार दिख रहा है। जानोगे तब हंस करके कहोगे कि क्षण क्षण में मुझे सिवाय परमात्मा के और कुछ दिख ही नहीं रहा। इसलिए भगवान ने कह दिया अनादिमत परम ब्रह्म, वो जो परम ब्रह्म है उसका न कभी आदि है न अंत है, वो तो जैसा है वैसा एक स्वरूप से है, उसके सिवाय जो कुछ है वो सब अध्यस्त रूप से ही परिस्फुरित होता है। उसका और क्या स्वरूप है इस पर आगे विचार करेंगे। ओम भद्रं करणे भी देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्मु नो विर्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।